नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदन लगातार पांचवें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिना किसी विशेष कामकाज के स्थगित। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने नौसेना में अगले 10 वर्षों में 96 जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल करने की घोषणा की। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक देश के कुल कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज की गई। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी ने सशस्त्र लूट के बाद केरेम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गजा में सहायता अभियान स्थगित किया। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू। और केरल में चक्रवात फेंजल के कम दबाव के कारण कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण रुकावट आई। दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी विशेष कामकाज के कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इस कारण कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा की कार्यवाही सवेरे शुरू होते ही विपक्षी सांसद एक व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों, संभल में हिंसा और मणिपुर की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर खड़े हो गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस, वामदलों और डीएमके के कई विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाने लगे। इसके बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तटीय जहाजरानी विधेयक 2024 पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के स्थगन नोटिस को नामंजूर कर दिया और हंगामा कर रहे सदस्यों से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और डीएमके के सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सवेरे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन शोर शराबा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। समाचार कक्ष से कनकलता।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद के कामकाज में रुकावट डालने के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर लोकतंत्र में विश्वास न रखने का आरोप लगाया। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान डालना जनता के पैसे की बर्बादी है।
ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की माड़ी है। संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा, ये दुखद घटना है।
उधर कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने कहा कि संसद तब तक नहीं चल पाएगी जब तक सदस्यों को सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा।
ये हाउस नहीं चल पाएगा जब तक आप बात नहीं करने देते। विपक्ष में जो बैठते हैं ये हमारी धर्म बनती है कि हम आके यहाँ उनकी आवाज यहाँ सुनाए। कोई शक है, कोई सवाल है, मगर जब ये है तो पूछने का हक तो रहनी चाहिए। तो आप उसको चलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे तो हम चुप रहें। डेमोक्रेसी की आवाज यहाँ सुनाने आए हैं।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर महीने एक जहाज शामिल किया जाएगा। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली में बताया कि 62 जहाज और एक पनडुब्बी निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि इस महीने की 4 तारीख को ओडिशा के पुरी में नौसेना दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती समुद्री क्षमताओं पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि वो चीन के सहयोग से कई युद्धपोत और पनडुब्बियां बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसियों द्वारा उत्पन्न सभी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बहुत सारे उनके जहाज और सबमरीन ये तो चाइना में बन रहे हैं, ये चाइना के हेल्प से बन रहे हैं। इससे तो पता चलता है कि चाइना इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान नेवी को और स्ट्रांग बनाया जाए। वी आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट स्टेट, व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, एंड देयरफॉर वी आर ट्वीकिंग आस एज वेल टू नेगेट एनी इंफ्रिंजमेंट इन आवर एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एंड वी आर फुली रेडी टू टैकल ऑल थ्रेट्स फ्रॉम आवर नेबर्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन के बाल योगी प्रेक्षागृह में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। ये फिल्म फरवरी 2002 में गुजरात में हुए गोधरा रेल अग्निकांड पर आधारित है। पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा था कि ये अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और वो भी ऐसे तरीके से जिसे आम लोग देख सकें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पिछले 8 महीनों के दौरान देश की कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कुल कोयला उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 35% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि नवंबर में इन खदानों से कुल 1,70,00,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ। मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन में ये वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप है। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ साथ अधिक निवेश और रोजगार सृजन होता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को शिक्षा और कौशल से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज 29वें CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में गौरव हासिल है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है।
We have to empower our people, empower our youth to grapple with the challenges of tomorrow. And that empowerment will come from education, skilling will lead to ease of doing business, ease of living. Two areas which we in India hold very important for our future.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बना रही है। आज नई दिल्ली में उन्होंने मीडिया को बताया कि देश में वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी होकर 780 हो गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
देश में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी की ओर से मिली।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने आज राज्य विधानसभा के 6 नव निर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा में उपस्थित थीं। राज्य में हाल ही में हुए उपचुनाव में ये विधायक निर्वाचित हुए थे। ये सभी विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री धनखड़ केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी स्थापना दिवस और महाराष्ट्र में शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने आज सवेरे नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 55 वर्ष के थे। वीरेंद्र सिंह आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी ने घेराबंदी वाले क्षेत्र में मानवीय सहायता को बाधित करने वाली लूट के बाद केरेम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में अपने सहायता अभियान को स्थगित कर दिया है। पिछले महीने की 16 तारीख को सशस्त्र गिरोहों द्वारा सहायता ट्रकों के पूरे काफिले को जब्त करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियाद में शुरू हो गया है। इसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। 2-13 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उबरने के काम में तेजी लाना है। सम्मेलन के दौरान आज रियाद ग्लोबल ड्रॉट रिजिलिएशन इनिशिएटिव की शुरुआत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रियाद में भारतीय दूतावास में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
आज एक पेड़ मां के नाम अभियान में रियाद एम्बेसी में सभी लोगों ने मिलकर के इस अभियान में भाग लिया है। दुनिया में इस समय जो पर्यावरणीय संकट है, धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है और सबसे ज्यादा जो जमीन की उर्वर क्षमता खत्म हो रही है, उसमें इंसान और सभी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए हमें धरती को हरा भरा रखना आवश्यक है। एक पेड़ मां के नाम अभियान उसमें एक यूनिक क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि ये संदेश पूरी विश्व में एक जन आंदोलन का स्थान ले।
मालदीव में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों को वहां डॉलर की उपलब्धता में लगातार कमी के कारण स्वदेश पैसा भेजने में कठिनाई हो रही है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मालदीव की मुद्रा रूफिया में वेतन पाने वालों के लिए डॉलर की उपलब्धता सीमित कर दी है। डॉक्टरों और शिक्षकों सहित भारतीय पेशेवर इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारत में उनके परिजन उनके द्वारा भेजे गए पैसों पर आश्रित होते हैं। भारतीय उच्चायोग ने मालदीव सरकार से डॉलर की उपलब्धता पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने और वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों लोकसभा में बताया था कि मंत्रालय मालदीव में भारतीयों के लिए पैसा भेजने की प्रक्रिया आसान करने के लिए मालदीव के साथ बातचीत कर रहा है। केरल में मौसम विभाग ने तेज वर्षा और भूस्खलन के कारण 5 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया है। 4 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका है। लोगों को जल निकायों और तटीय क्षेत्रों से बचने की भी सलाह दी गई है। मछली पकड़ने और समुद्र तट की सैर जैसी गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भूस्खलन संभावित और निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। सभी जिलों और तालुका में नियंत्रण कक्ष कार्यरत हैं। मूसलाधार वर्षा के कारण सबरीमाला पारंपरिक वन मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदन लगातार 5वें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिना किसी विशेष कामकाज के स्थगित। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने नौसेना में अगले 10 वर्षों में 96 जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल करने की घोषणा की। चालू वित्त वर्ष में नवम्बर तक देश के कुल कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज की गई। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी ने सशस्त्र लूट के बाद केरेम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गजा में सहायता अभियान स्थगित किया। और केरल में चक्रवात फेंजल के कम दबाव के कारण कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।